श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्
श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्
तत्परः संयते इन्द्रियः
तत्परः संयते इन्द्रियः
तत्परः संयते इन्द्रियः
तत्परः संयते इन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति
ज्ञानं लब्ध्वा परां
शांति अचिरेणादि गच्छति अचिरेणादि गच्छति श्रद्धावान तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करने से शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है। जिसको हम ज्ञान कहते हैं या कृष्ण की भाषा में वो ज्ञान परमात्म तत्व ज्ञान से संबंधित ज्ञान है। एक होता है ऐहिक ज्ञान, दूसरा होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान की सत्ता से ही ऐहिक ज्ञान का भी कुछ गाढ़ा चलता है। वास्तविक शुद्ध ज्ञान की सत्ता लेकर हमारी इंद्रियां, हमारा मन अलग अलग दिखाकर अलग अलग कल्प कर व्यवहार करता है। तो वास्तविक ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक इस जीव को परम शांति नहीं मिलती। जब तक इस जीव को परम शांति नहीं मिली तब तक इस जीव के जन्म मरण का दुख और मुसीबतें कष्ट का अंत नहीं आता। आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति मतलब मानसिक शांति, ये शांतियां तो कई बार बेचारी आती है फिर चली जाती है। जब आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान होता है तो परम शांति का अनुभव होता है। परम शांति मिलती है तो फिर एक बार परम शांति मिली तो वो जाती नहीं। लब्ध्वा ज्ञानम परम शांति। वो परम शांति कैसी है? अचिरेणादि गच्छति। ज्ञान हुआ कि परम शांति हो गई, फिर उसमें समय नहीं लगता। तो ज्ञान पाने के लिए भगवान साधन बता रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः। अकेली श्रद्धा रखी और फिर अपनी श्रद्धा का किसी ने उपयोग कर लिया, दुरुपयोग कर लिया और अपने मन बुद्धि कुंठित रह गए। बस श्रद्धा करो, मान लो। तथा कथित लोग कहते हैं कि बस श्रद्धा करो, बोलने की जरूरत नहीं, श्रद्धा करो। श्रद्धा के साथ शंकराचार्य ने कहा कि श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि किसी मजहब को, किसी मत को, किसी पंथ को, किसी बात को मानकर एक कोने में मंडारते रहना, जिंदगी कोलू की बैल की नाई घूमते रहना, इसका नाम श्रद्धा नहीं। तो कई बार श्रद्धालुओं को लगता है कि मेरे को बहुत श्रद्धा है। ऐसे श्रद्धालुओं को श्रद्धा का मापदंड निकालने का अवसर कृष्ण देते हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी है उसको जानो, जानना चाहो तो आपकी साधन भजन में तत्परता कितनी है। साधन भजन में अथवा मुक्ति लाभ में आपकी तत्परता कितनी है, और तत्परता जितनी होगी उतना इंद्रिय संयम होगा। जितना इंद्रिय संयम होगा उतना आपका अंतर मनस, आपका अंतर आत्मा बलवान होगा। आप सुख दुख में हिलेंगे नहीं। ऐसा भी अवसर आएगा कि दुनिया का बड़े में बड़ा लाभ भी आपको उल्लू नहीं बनाएगा और बड़े से बड़ी हानि भी आपको उल्लू नहीं बनाएगी। उल्लू को जैसे सूर्य नहीं देखता, ऐसे ही जिसको अपना असलियत नहीं देखता है वही आदमी छोटी छोटी चीजों में सुखी दुखी होकर प्रभावित होकर अपने आप को नाश कर देता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियाः। श्रद्धा श्रद्धा तो करनी पड़ती, भक्ति मार्ग में भी श्रद्धा की आवश्यकता है, व्यवहार में भी श्रद्धा की आवश्यकता है कि 2 लाख रुपया गुडविल देकर दुकान लूंगा, 2 लाख का माल भरूंगा, फिर धंधा होगा, 4000 रुपया महीने का ब्याज निकलेगा, 1000 रुपया दुकान का खर्च, 5000 उसके ऊपर भी मुनाफा होगा, हमारा गुजारा चलेगा, तभी वो धंधा करता है। यहां से बद्रीनाथ जाना है ना तो कई ड्राइवरों पर कंडक्टरों पर श्रद्धा रखनी पड़ती, हालांकि बद्रीनाथ जाते जाते लोग यमपुरी पहुंचा देते, कई ही गाड़ियां गिर जाती, फिर भी ड्राइवरों पर श्रद्धा रखनी पड़ती, अपने बाप पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है, किसी ने कह दिया मां ने कि ये तेरा बाप है, मान लिया, तो श्रद्धा तो मां पर भी रखनी, बाप पे भी रखनी पड़ती है, और श्रद्धा ये मेरा काका है ये भी हमने श्रद्धा से माना, ये मेरा मामा है ये भी श्रद्धा से माना, और हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम मारवाड़ी हैं, ये भी तो सुन सुन के माना, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा अब। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ये श्रद्धा व्यवहारिक श्रद्धा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते वो श्रद्धा अपने आत्मदेव को पाने की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा के लिए छूटने की, सर्व दुखों से सदा के लिए छूटने की, सदा की मुसीबतें सर्व काल के लिए मुसीबतों से सदा के लिए पार होने की, उनके प्रति हमारा आकर्षण है, और जो अचल है उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, जो अचल है उसके तरफ हमारा उत्साह नहीं है, इसलिए हम अशांत होते हैं। जो नश्वर चीजें हैं, जो चल वस्तु हैं, उनको पाकर सुखी होने की बेवकूफी हमारी बनी रही है, और जो सारा वास्तविक में शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसमें स्थित होने के बाद मौत की भी मौत हो जाती है, ऐसे परमात्मा तत्व में अगर तत्परता आ जाए पाने की, उसमें अपने वास्तविक स्वरूप में अगर टिकने की दृढ़ता आ जाए, तो शांति तो हमारा स्वभाव है, शांति आपका स्वभाव है, अमरता आपका स्वभाव है, आपको पता नहीं, मरने वाले शरीर और मरने वाली वस्तुओं में इतने हम विमोहित हो गए कि अपनी अमरता का आज तक हमने ज्ञान नहीं पाया। अपने मुंह में 32 दांत हैं तो पत्थर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्यों पत्थर पड़े निकाल के फेंक दो, ऐसा कभी विचार नहीं आता। रोटी का अथवा सब्जी का कोई तिनखा पसता है ना तो जीभ बार बार वहां जाती है, उसको निकाले बिना चैन नहीं लेने देती। दांत होना स्वाभाविक है, और दांत में कोई चीज फंस जाना ये अस्वाभाविक है, फंसी रहना अस्वाभाविक है, उसको निकालना पड़ता है। ऐसे ही सुखी जीवन और शांत जीवन सब चाहते हैं, दुख और अशांति कोई नहीं चाहता। तो सुख और शांति प्राणी का मूल स्वभाव है, दुख और अशांति मन की बेवकूफी से, इच्छा और वासना की बेवकूफी से आती है। आप कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, अशांति मिले, कोई नहीं चाहता है। शांति और सुख ये तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी स्वाभाविक मांग है, अशांति और दुख तुम्हारी मांग नहीं। फिर भी अशांति और दुख पैदा करे ऐसे विकारों के साथ, ऐसी तुच्छ चीजों के साथ हम मिल जाते हैं, तो मिलने की आदत को तोड़ने के लिए साधन में तत्परता चाहिए। साध्य को पाए बिना साधक अगर रह जाता है तो उसकी श्रद्धा परमात्मा में इतनी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम का मतलब ये नहीं कि किसी मत पंथ मत है कि तुम मर जाओगे, हम कंधों पे उठा के तुम्हें बिस्त में ले जाएंगे, ये करेंगे, इसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं श्रद्धा के साथ तत्परता चाहिए। अगर मरने के बाद कोई किसी को कंधों पे उठा के कहीं ले जाता हो तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता कही क्यों अर्जुन को? अर्जुन को बोलते युद्ध कर ले, तू मर जाएगा तो मैं कंधों पे उठा के तुझे मुक्त कर दूंगा। राम जी को वशिष्ठ महाराज ने उपदेश आत्मज्ञान का क्यों दिया? राजा जनक को अष्टावक्र बोल देते कि तुम मंत्र दीक्षा दे ले ले और मरने के बाद मेरे कंधों पे चढ़ा के तेरे को पहुंचा दूंगा। नहीं, श्रद्धा के साथ थोड़ी तत्परता चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, अगर ज्ञान के लिए तत्पर होगा तो इंद्रियों में, साधन में तत्पर होगा तो इंद्रियों में संयम आएगा। बेसंयमी इंद्री मन को और चित्त को कमजोर कर देती है। जो आदमी छोटी छोटी बात की असर जिसके चित्त पर होती है वो आदमी बहुत छोटा हो जाता है, किसी आदमी का भविष्य तुम अगर जानना चाहो तो देखो कि उसे बात करते करते छोटी मोटी बात में वो उसके चित्त में असर होती कि नहीं होती। अगर छोटी छोटी बात की असर होती है तो समझ लेना कि इसका भविष्य छोटा है, होलसेल नहीं है चित्त। और जिस पर छोटी मोटी बात की असर नहीं होती उसका हृदय विशाल होता चला जाएगा। ज्यो ज्यो छोटी मोटी बात की असर नहीं होगी, सुख दुख की मान अपमान की असर कम होती चली जाएगी, त्यों त्यों उसकी साध्य के प्रति तत्परता सिद्ध होती, हृदय उसका विशाल होता जाता है, हृदय उसका महान होता जाएगा और एक दिन वो महात्मा बन जाएगा। ऐसा कोई भी धर्मगुरु अथवा घर का कुलपति, समाज का कुल का कुलपति या ग्रह का कोई विशेष व्यक्ति अगर हो तो उसके घर की क्या परिस्थिति हुई मत देखो, उसके चित्त की क्या परिस्थिति, जैसी उसके चित्त की परिस्थिति है ऐसे ही घर में मिसमैनेजमेंट होगा या सुमैनेजमेंट होगा। अपने चित्त के ऊपर ही अपने व्यवहार का आधार है। हम लोग किसी को आदेश दें ये काम करो तो काम करने का जो हम कहने का ढंग है उस पर ही सामने वाले के कार्य करने की उत्साह की वृत्ति उठेगी कि अर्धोत्साह रहेगा कि विपरीत रहेगा, उसका ख्याल आप ला सकते हैं। तुम्हारे चित्त में जितनी जितनी राग द्वेष की ठोकरें कम लगेगी, जितनी तुम्हारी कोई भी कार्य में श्रद्धा होगी, तत्परता होगी, उतना ही तुम्हारा व्यवहार विशालतामय होगा। और जितना विशालतामय व्यवहार होगा और एक चित्त होगा उतना ही सामने वाले के चित्त पर प्रभाव पड़ेगा, वो आपके इर्द गिर्द होंगे। जो बोलता है जा जा तो उसको जा करने वाले मिलते, जो दूसरों को ठग की नजर से देखता है उसको ठग ही मिलते, जो दूसरों को चोर की निगाहों से देखता है उसको प्राय चोर आ मिलते हैं, लेकिन जो दूसरों में अपने प्यारे इष्ट को परब्रह्म परमात्मा की निगाह से देखता है उसका चित्त परमात्मा मय बन जाता है। आपकी जैसी दृष्टि होती है ऐसा ही परिणाम आता है। ओतप्रोत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ परब्रह्म परमात्मा सत्व है, फिर भी तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो एकम एव अद्वितीय है, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी आलादनी शक्ति माया में ये सब पांच भूत और भौतिक वस्तुएं हैं। तो ये व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार करके अगर सोचा जाए तो भगवान के अवतार कई किस्म के होते हैं। अवतरती इति अवतार है, जो अवतरित हो उसको अवतार बोलते हैं, ऊपर से नीचे आए, अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप को छोड़कर माया का स्वीकार करके अगर नीचे आता है तो उसको अवतार कहते हैं। ये अवतार कई किस्म के होते हैं। एक होता है नित्य अवतार। नित्य अवतार उसे कहते हैं जो समाज की उन्नति करने के लिए मानव तनधारी पुरुष आते हैं और जैसे हम खाते पीते रोते हंसते उठते बैठते चढ़ते उतरते सुखी दुखी आदि परिस्थितियों में रहते, ऐसी परिस्थितियों को पार करते हुए अपने पर ब्रह्म स्वरूप में जगे हुए पुरुष समाज में जब अवतरित होते रहते हैं उनको नित्य अवतार कहा जाता है। कंस को अथवा राम को या मृख बादशाह को या और किसी निमित्त को लेकर जो परब्रह्म परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है उसको नैमित्तिक अवतार कहते हैं। तीसरा होता है आवेश अवतार। जैसे किसी भक्त पर अति मुसीबत पड़ी, प्रहलाद पर खूब मुसीबत गुजरी तो भगवान नरसिंह रूप होकर प्रकट हुए, आवेश अवतार। नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार। कभी कभी किसी के अंदर भगवत शक्ति का प्रवेश होकर समाज का प्रकाश करने का कभी हमने सुना देखा हो तो ऐसा उसे प्रवेश अवतार कहते हैं। कुछ अवतार ऐसे होते हैं जिन्हें अर्चना अवतार कहा जाता है। जैसे भक्त के पास अपनी प्रतिमा है, फिर है शालिग्राम हो, चाहे शिवलिंग हो, चाहे झूलेलाल की मूर्ति हो, चाहे अपने गुरु की हो, चाहे कृष्ण की हो, कोई भी अर्चना करने योग्य जो उसकी सेवा पूजा की मूर्ति है उसमें उसकी श्रद्धा और तत्परता है तो अर्चना अवतार में भगवान भक्त के भाव के अधीन भगवान उसके पत्रम पुष्पम आदि फल आदि प्रसाद आदि भावना आत्मक ले लेते हैं। और भक्त की अति तत्परता और अति श्रद्धा होती है तो कभी कभी जैसे धन्ना जाट के जीवन में सिल बट्टे से भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने भोजन ले लिया, श्रीनाथ जी के आगे नरो नाम की लड़की ने दूध धरा और अर्चना अवतार में से भगवान ने वो ले लिया। तो ऐसे मूर्ति में से जो भगवान की चेतना विशेष प्रकट होती है और भक्त के भावना के अनुसार वो भगवान ग्रहण करते हैं, उसको अर्चना अवतार बोलते हैं। कुछ अवतार होते हैं जिन्हें प्रेरक अवतार और अंतर्यामी अवतार भी कहते हैं। जो भक्त श्रद्धालु है, तत्पर है, तो उसके अंदर प्रेरणा होती रहती है कि अब इस जगह सत्संग में जा, इधर इस गरीब के आंसू पूछने का काम कर, ये सेवा कर, लेकिन दिखावे का ढोंग मत कर। तो ये अगर थोड़ी बहुत भक्त की श्रद्धा और तत्परता है तो अंतर्यामी परमात्मा प्रेरणा करता कि ये उचित है, ये अनुचित है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हम नर्मदा किनारे अकेले उस परमात्मा के लिए रातियां बिताते थे तो अंदर से तूफान पैदा होता था। अब यहाँ जाओ, ये करो, भाई कौन कह रहा है कि जिसकी तुम पूजा, जिसको तुम चाहते हो। फिर अंदर से आवाज आता कि मन की कल्पना बल्पना नहीं है, तुम लीला साहब बापू के पास जाओ, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से तुम्हें वहां समझ में आ जाऊंगा। तो ये भगवान का प्रेरणा अवतार हम मान सकते हैं। कुछ अवतार ऐसे होते हैं, प्रेरणा अवतार साधकों के हृदय में होते रहते हैं। तो भगवान युग युग में तो आते, लेकिन युग में कई बार आते हैं। और प्रेरणा अवतार अर्चना अवतार की तो कोई गिनती ही नहीं, इतने जितने हृदय है उतनी बार भगवान प्रेरणा कर सकते हैं, जितने हृदय उतने हृदयों को भी प्रेरणा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती वह है कि वे हृदय श्रद्धा और तत्परता से भरते नहीं, इसीलिए प्रेरणा अवतार का, अर्चना अवतार का, अथवा भगवान के आवेश अवतार का, प्रवेश अवतार का हम लोग लाभ नहीं ले सकते। पाश्चात्य जगत में अभी श्रद्धा के विषय पर थोड़ा अध्ययन हो रहा है। आदमी के मन की मान्यता क्या क्या परिणाम ला सकती है उस पर विज्ञानी लोग प्रयोग कर रहे हैं। एक घटित घटना है कुछ वर्ष पूर्व की, किसी आदमी को खून केस के आरोप में पकड़ा गया और सेशन कोर्ट ने दो खून साबित कर दिखाए, उस पर फांसी का हुक्म जारी हुआ। हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन हारता चला गया। आखिर उसने, आरोपी ने राष्ट्रपति को दया की अर्जी दी, लिखी, वो भी ठुकरा दी गई। विज्ञानियों ने उस आदमी को कहा कि फलानी तारीख अब तो अपने पाप का फल भोगने के लिए फांसी चढ़ेगा। उसने कहा इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तो हमारा कोई बचने का उम्मीद नहीं है। जब बचने की उम्मीद नहीं तो मरते मरते एक काम ऐसा कर जा कि मानव जात के काम आ जाए तेरा शरीर, फांसी पे लगकर मरो अथवा हमारे प्रयोग में आते आते मरो, मरना तो है तुम्हें। तो आदमी सहमत हो गया। तो हाई कोर्ट से उन लोगों ने लिखित अनुमति भी प्राप्त कर ली। अब जिस दिन उस आदमी को फांसी लगनी है, उस दिन विज्ञानी, मनोविज्ञानियों ने और डॉक्टरों ने अपने साधन सामग्री से सुसज्ज होकर उसके आगे एक प्रयोग करना चाहा। उसको विज्ञानी ने उसको कहा कि सर्प के दंश से तेरी मृत्यु हम कराएंगे और फिर सांप के डंकने के बाद कितनी देर में जहर कितना आगे बढ़ता और कैसी असर होती है, आदमी कैसे मरता है और उसके निवारण का उपाय हमको खोजना है, इसलिए तेरे बॉडी को हम सर्प दंश से फांसी जैसा काम करेंगे, मतलब तेरी मृत्यु फांसी के द्वारा नहीं सर्प दंश के द्वारा हम कराएंगे। हाईकोर्ट भी सहमत हुई, तू भी सहमत हुआ। समय सुनिश्चित था, उस समय पर उन्होंने क्या किया, एक घोड़ा लाकर रख दिया सामने। अभी समय में थोड़े कुछ मिनट बाकी, 25-30-40 मिनट, सांप निकाला और सर्प का मुंह पकड़ के घोड़े को डंक लगवा दिया। उस कैदी ने, उस मुजरिम ने देखा, मुजरिम ने देखा तो सर्प दंश हुआ और घोड़े पर जहर के असर हुए और छटपटाते हुए घोड़ा गिर पड़ा और थोड़ी देर में प्राण दे दिए। विज्ञानियों ने कहा कि इसी सर्प से अभी हम तुम्हारे आखिरी यात्रा पूरी कराएंगे, प्रयोग करना है। पट्टियां बांध दी गई, कंधे तक काला कपड़ा लगा दिया गया, कहा कि बस अब 2 मिनट बाकी है, अब 1 मिनट, अब आधी मिनट, अब तेरा समय फांसी का आ गया। सर्प दंश के बदले उन लोगों ने चूहा कटवा दिया, पट्टा तो आंखों के बंधा था, चूहा कटवा दिया और कह दिया कि उसी सांप ने तेरे को काटा, मर गया। तो उसकी श्रद्धा थी, मान्यता थी, प्रत्यक्ष की नहीं, विश्वास, उसको श्रद्धा बोलते। तो सर्प ने काटा, उसने समझाया, चूहे ने काटा, लेकिन उसने समझा कि मुझे सांप ने काटा है। सांप ने काटा है और फांसी लगनी थी, बिल्कुल सुव्यवस्थित था, सुनिश्चित था, पहले प्री प्लानिंग था ही। बस सांप ने काटा, जो चूहे का डंक लगा, सर्प ने काटा, ऐसी उसकी आंतरिक श्रद्धा ने उसके शरीर में छटपटाहट पैदा कर दिया। जो घोड़ा छटपटाया त्यों वो आदमी सर्पदंश का प्रभाव समझकर छटपटाया। विज्ञानियों ने उसके शरीर में से ब्लड चेक करने के लिए खून लेते गए तो वो ताजुब में पड़ गए कि खून में जहर कैसे आ गया। थोड़ी देर में वो आदमी तो मर गया, चूहे को जांच किया तो चूहे में कोई जहर था नहीं, और उसके शरीर में जहर कैसे बना। चलो आपने काटा है, काटा में मर गया, ऐसे आदमी मर सकता है। हार्ट फेल वाले आदमी भी कभी कभी ऐसे ही हार्ट फेल हो जाते, मेरा क्या होगा। कहीं दरोड़ा पड़ा और 8 लाख रुपया डॉक्टर का ले गए, है करके सदा के लिए चला गया। तो ये मानसिक असर इतना आदमी तत्पर हो जाता है, डांटते तो बच्चे का मन भी इतना उस समय वीक हो जाता है कि एक ही बेकी कर लेता है। ये भी हमने देखा सुना है। तो तुम्हारा मन का प्रभाव तन पे पड़ता है, लेकिन विज्ञानी चकित हैं कि मन का प्रभाव तन पे तो पड़ा लेकिन तन में विष कैसे बन गया। उन बिचारों को बहुत सोच विचार के ये निर्णय करना पड़ा कि मन में ये शक्ति है जो जहर बना लेता है। लेकिन उनको पता नहीं कि हिंदू संस्कृति में हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले छोटे छोटे योगी भी कहते थे कि तुम अगर तुम्हारे मन में तीव्र श्रद्धा है तो अमृत से विष बन सकता है और विष से अमृत बन सकता है। ठूंठे में चोर देखते हो और कांपने लगते हो, रस्सी में सांप देखते हो मन भाव बना लेता है तो कांपने लग जाते हो, और रस्सी में सांप दिखता है तो आदमी कांपता है, और सांप में रस्सी दिखती है तो उसके सिर पर पैर रख के चला भी जाता है। तो तुम्हारे मन की जो अवस्था है उस समय तुम्हारे तन पर और तुम्हारे व्यवहार पर ऐसी असर पड़ती है। तो मन तुम्हारा कल्प वृक्ष है, इसीलिए कपड़ा बिगड़ जाए तो चिंता नहीं, पैसा बिगड़ जाए तो चिंता नहीं, लेकिन अपना मन मत बिगाड़ना, क्योंकि उसी के द्वारा मालिक का साक्षात्कार भी हो सकता है। कभी छोटी मोटी बातों में घबरा जाना नहीं। घबरा के जो आदमी निर्णय करता है वो बहुत धोखा खाता है। भयभीत होकर कुपित होकर जो आदमी डिसीजन लेता है उसको बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। भय और कुपित होकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। शांत मना होकर अच्छा मानसिक संतुलन लेकर फिर निर्णय करना चाहिए और फिर अमुक अमुक प्रवृत्ति के डिसीजन लेना चाहिए। मूर्ख बादशाह को बहकाया दिया गया कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओगे तो खुदा ताला बिस्त में ले जाएगा। उन बेवकूफों को ये पता नहीं कि शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, इसे तू दुनिया मत समझ मियां, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। दूसरों को तलवार के बल से, राजसत्ता के अंधे बल से अगर दूसरे का धर्म बदल कर उनको मुसलमान बनाकर खुदा ताला राजी होता है तो वो खुदा खुदा हो नहीं सकता है। जो खुद ही है रोम रोम में उसी को खुदा बोलते हैं। जो आप ही आप है, ना कोई माई ना कोई बाप, आप ही आप, वही जो खुद ही खुद बस रहा है उसको खुदा बोलते हैं, जो रोम रोम में बस रहा है उसको राम बोलते हैं। एक का एक है, नाम अनेक है, जैसे गंगा एक और घाट अनेक, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा एक और उसकी उपासना आराधना के घाट अनेक हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि सब कोई इंदौर के घाट से ही गंगा पे जाए, जरूरी थोड़ी है कि सब कोई आगरा लोकल से ही दिल्ली होते हुए हरिद्वार जाए, कोई कहीं से जाए, कोई कहीं से जाए, कोई कहीं से जाए, पहुंचना हरिद्वार है, हरि के द्वार है। लेकिन ये मति श्रद्धा, अंध श्रद्धा वाली मति को पता नहीं चलता। श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम हो तभी आदमी ठीक निर्णय लेता है। मूर्ख ने थोड़ा गलत निर्णय लिया, लेकिन गलत निर्णय तो कोई ले ले, आप गलत निर्णय के शिकार बनो या न बनो उसमें आप स्वतंत्र है। कोई गलत निर्णय लेता है और आपके ऊपर जुल्म करता है, आप उसके जुल्म के शिकार बनो या न बनो उसमें आप स्वतंत्र है। कोई आप पर कुपित होता है और आप पर कोप का जहर विष फेंकता है, उस विष को पीकर तुम बीमार हो तो तुम्हारी मर्जी और न हो तो तुम्हारी मर्जी। वो तो कुपित होता है, लेकिन उस समय तुम सोचो कि वो कोप तो कर रहा है, कोप कर रहा है, इस शरीर को देखकर हार्ड मास के शरीर पर नाराज हो रहा है, मुझे चैतन्य का क्या बिगड़ता है। हरिओम तत्सत कोप गप सप। अपने दिल की अपने चित्त की जो रक्षा नहीं करता है वो चाहे कितने मंदिरों में जाए, कितने मस्जिदों में जाए, कितने गिरजाघरों में जाए, लेकिन अपने दिल के घर में जाने का द्वार बंद कर देता है तो गिरजाघर में और मंदिर मस्जिद में भी भगवान नहीं मिलते। अगर जिसने अपने हृदय की रक्षा किया है वो मंदिर में जाता है तो उसके आगे मंदिर के भगवान भी वास्तव में कणकण में भगवान है, तो मूर्ति में भी उसको भगवान के दीदार हो सकते हैं। जो स्नेहियों में, कुटुंबियों में, समाज के पिछड़े हुए लोगों में परमात्मा निहार नहीं सकता है, वो मरने के बाद किसी लोक में जाकर भगवान को देखे, ये बात गले नहीं उतरती। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत्य प्रगट हुई में जाना। परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र है। जितना हमारी वृत्ति तदाकार होती है, प्रेम उभरता है, उतना ही वो परमात्मा रस से भरती है और देर सबर हमारे आवरण भंग हो जाते, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। डिठो मुख शन साजो हियरे थिम करार, लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुरु जे दीदार। सतगुरु शाह तारिया श्रद्धा वारा लख, बाहबण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऊंचा नीचा मानख, मुझेड़ा मूर्ख के तारिया केतरा। सतगुरु जब निगाह देते हैं तो फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई आदमी जब सतगुरुओं की निगाह में अपनी निगाह मिला देते हैं, सतगुरु की श्रद्धा और तत्परता में अपनी तत्परता और श्रद्धा मिला देते हैं, जैसे दूज का चांद देखना है तो जिस आदमी को चांद दिखता है उसके साथ हम अपनी दृष्टि मिला देते हैं तो हमको भी दिख जाता है। ओ काका छबलमल, ओ देखो देखो, ओ दिस चेटी चंड जो, ओ चंड दिस जिससे जाता कौन, ओ काका वो नीम है ना, नीम नीम का डाल उसकी दाई ओर, ओ दाई ओर तो कुछ नहीं साजे पासे कुछ, ओ छोटी सी बादली नहीं, काली काली थोड़ी सी बादली, क्या बादली तो, ओ बादली के बिल्कुल ओ थोड़ा, अरे हाँ हाँ डिठो डिठो डिठो, वो था तो पहले लेकिन दृष्टि सूक्ष्म नहीं थी इसलिए नहीं दिख रहा था। ऐसे वो परमात्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा, लेकिन हमारी दृष्टि जब सूक्ष्म होती है उसी समय उसके दीदार हो जाते हैं। लेकिन एक फर्क यह है कि वो चंद्रमा आज दूज का देखा, कल बदल जाएगा तीज का और अमावस्या को नहीं देखेगा, लेकिन ये चांद एक बार दिख गया तो फिर कभी अदिखा नहीं होता है, क्योंकि वो सदा एक रस रहता है, शाश्वत रहता है। तो अवतारों की परंपरा ऐसे कि नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, अर्चना अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरक अवतार,